सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् सयलो वसगणिवः संवरणेनेव जस्सफिट्टन्ति पाशस्सतस्सणमिम् पाषणयो अम्परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के अनुसार इसकी उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 13वीं पुस्तक जो पंचम खंड वर्गणा खंड, उसमें कर्म अनुयोग द्वार की बात चल रही है अपनी। हाँ, और उसमें अभी हम जो 6 प्रकार के क्रिया जो है, क्रिया नहीं, 6 प्रकार के कर्म, कौन कौन से 6? प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इर्यापत कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म। इन पर सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत पर लगाएंगे, तो उसमें भी वो आदेश और ओग की अपेक्षा अलग अलग। उसमें से अभी हम यहाँ पर आ गए हैं पृष्ठ संख्या 111 पर, पहली लाइन में। अब यहाँ विषय कौन सा चल रहा है उसको देखते हैं। कालानुगम की बात चल रही है, हमने सत, फिर द्रव्य प्रमाणानुगम ने संख्या भी देखी, क्षेत्र भी देखा, स्पर्शन भी देखा, काल की बात चल रही है, अलग अलग कर्मों में काल को लगाना है। वो हमने कर्मों की बात रिपीट की तभी आए आप थे ना विनोद भाई, ये कौन से कर्मों किसको कहना वो बात याद है आपको। हाँ, प्रयोग कर्मों में योग वाले जीव लेते हैं, समवदान कर्म में 8 कर्म बांधना है, 7 वाला, 6 कर्म बांधने वाले, फिर अधक कर्म में औदारिक शरीर के परमाणुओं को यानी 9 कर्म वर्गणा को और प्रदेश में उसकी वर्गणा को। क्षेत्र में ये बात हमने ख्याल में लेने योग्य समझी कि औदारिक शरीर के जो स्कंध है, तो जब एक समय में वो उदय रूप होकर निकल जाते हैं तो उसका पूरा लोक क्षेत्र कहाँ है। औदारिक शरीर अधक कर्म का क्षेत्र कितना है ऐसा पूछा तो उसका पूरा लोक बताया, कोई भी किसी भी मार्गणा में पूरा लोक ऐसा कहा, क्योंकि वहां द्रव्यार्थता किसको कहना, 9 कर्म वर्गणा को, और प्रदेशार्थता कहना है उसके परमाणुओं को। तो ये जब छूट जाते हैं जीव की, जीव से वो निकल जाते हैं, उसको कहे उसकी उदय हुआ उसका, तो उसी रूप में उसी अवस्था में वो पूरे लोक में फैल जाते हैं, तो इस अपेक्षा से उसको पूरा लोक कहा। भले वो मनुष्यों के अधिक कर्म हो, अकेले समय दृष्टियों के हो, कहीं भी हमने देखा था उसको पूरा लोक क्षेत्र बताया था, तो उसके उसी अवस्था में कम से कम कितने काल तक रहते हो तो 1 समय, अधिक से अधिक कितने काल तक रहता है तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक, ऐसा हमने देखा था। असंख्यात लोक में क्षेत्र नहीं समझना, काल को समझाने वाला माप है वो, ये विशेष बात हमने देखी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम बाकी कर्मों की, अधिक कर्म की खास बात थी। इर्यापत कर्म किसको कहते हैं याद है? हाँ, एक समय में जो ग्रहण हो रहा है वो 11वें 12वें 13वें 14वें वाले को इर्यापत कर्म। तपक कर्म सभी संयतों के होता है, 6 से लगाकर 14वें तक, क्योंकि उनके ध्यान नाम का भी तप वहाँ चल रहा है। और क्रिया कर्म सम्यक दृष्टियों के होता है, परंतु श्रेणी वालों के नहीं होता। इतनी बात ख्याल में लेनी है। अब उसका काल हम देख रहे हैं, तो सामान्य से हमने सभी कर्मों का काल देखा था। सामान्य से अगर हम देखेंगे तो प्रयोग कर्म का प्रयोग कर्म और समवदान कर्म नाना जीवों की अपेक्षा से तो सर्वकाल रहेगा ही। नाना जीवों की अपेक्षा तो ये सर्वकाल रहेगी सभी कर्म, परंतु एक एक जीव की अपेक्षा अगर लेंगे तो प्रयोग कर्म अनादि से था, कोई भवे जीव, और फिर उसका योग मिटकर अयोगी होकर वो मुख चला जाता है, तो फिर उसका वो अनादि शांत हो जाएगा। समवदान के बारे में भी वैसा है, यानी एक जीव और अनेक जीव इसके अपेक्षा से वो बात बदलेगी। इरियापत कर्म भी हमने देखा था, वो तो नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा होगा, क्योंकि तेरवा गुणस्थान हमेशा ही रहता है उस अपेक्षा से, अन्य गुणस्थानों में तो अंतर पड़ता है। तपक कर्म भी हमेशा रहेगा, और कौन से रहे भी, अधक कर्म भी नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा ही रहेगा, और क्रिया कर्म वो भी हमेशा रहेगा। अब आदेश की अपेक्षा से हम बात देख रहे थे 110 पृष्ठ से, हाँ 111 के पहली लाइन में आए हैं, परंतु ये मार्गणा की अपेक्षा हम 110 से शुरू किए थे। यहाँ भी ऐसे ही लगाना कि नरक गति में प्रयोग कर्म और समवदान वगैरह वगैरह जो है वो तो नाना जीवों की अपेक्षा तो हमेशा ही रहेगी, वहाँ नरक में कोई नारकी नहीं है ऐसी बात होगी नहीं। तो एक जीव की अपेक्षा जो कुछ डिफरेंस पड़ता है, तो मूल में वहाँ कौन कौन से होते हैं कर्म, वो तो हमने सत प्ररूपणा में देखे थे कि यहाँ तप कर्म नहीं होगा, इरियापत कर्म नहीं होगा, अधक कर्म नहीं होगा, बाकी तीन तो होंगे इस तरह से उसका। अब उस पर काल घटित करना है हमें। देखो यहां से फिर पढ़ते हैं 110 नंबर पृष्ठ से, आदेश से। आदेश से गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। क्रिया कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। यानी कोई मिथ्या दृष्टि है, वो समय दृष्टि प्राप्त करता है, उसमें भी वो दृष्ट मार्ग लिया है कि जो बहुत बार वो सम्यक्तों से मिथ्यात्व में से सम्यक्तों में गया है, क्योंकि उसका जघन्य अंतर्मूर्त घटित होता है, इसलिए जघन्य काल के लिए दृष्ट मार्ग को लिया। दृष्ट मार्ग जीव मिथ्या दृष्टि या सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से आकर क करना सम्यक्तों को ग्रहण कर सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक वहां रहकर पुनः अन्य गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके क्रिया कर्म का सबसे जघन्य काल उपलब्ध होता है। देखो अभी नरक गति में चौथे से अन्य कौन से गुणस्थान में जा सकता है? पहले दूसरे तीसरे किसी भी गुणस्थान में जा सकता है, क्रिया कर्म की बात है ना, वहां ऊपर के तो गुणस्थान है ही नहीं है, क्योंकि मनुष्यों में अगर कहना पड़ता तो नीचे के गुणस्थानों में जाता है ऐसा कहना पड़ता, नरक में तो ऊपर कोई गुणस्थान ही नहीं है, इसलिए अन्य गुणस्थान में कहा, ख्याल है? हाँ, क्योंकि गति उन्होंने पहले बता दी है, इसलिए अभी वो इस तरह से कह सकते हैं। 110 पृष्ठ। उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि वो उत्कृष्ट काल कैसे घटित होगा? सम्यक दृष्टि सातवें नरक का, वह सम्यक्तों के साथ जन्मता नहीं है, तो पहले पर्याप्ति के लिए एक अंतर्मूर्त लगा, फिर विश्राम एक अंतर्मूर्त, फिर सम्यक तो एक अंतर्मूर्त में प्राप्त किया, सम्यक दृष्टि हुआ, और पूरे 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा। अंत में एक अंतर्मूर्त पहले ही मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, फिर आयु का बंध हुआ, फिर अंतर्मूर्त रुका, फिर मरण को वो अंत में भी तीन अंतर्मूर्त घटित किए उन्होंने, तो एक कुछ कम 33 सागर प्रमाण उसका क्रिया कर्म का काल होगा। यही बात उन्होंने नीचे समझाई है। अभी हम यहाँ पृष्ठ 111 पर आते हैं, पहली लाइन, ये कर्मों में काल घटित कर रहे हैं हम। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में प्रयोग कर्म व समवदान कर्म और क्रिया कर्म के जघन्य और उत्कृष्ट काल का कथन करना चाहिए, यह हुआ है, ये करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का जघन्य काल एक समय अधिक 22 सागर है। किसकी बात चल रही? सातवीं पृथ्वी में जघन्य काल बोल रहे हैं। उत्कृष्ट काल तो हमें पता है, वहां के जो 33 सागर है वो उसका उत्कृष्ट काल है। जघन्य कितना है? ये 22 सागर क्यों लिया? हाँ, जो पहले यानी छठे के जो उत्कृष्ट काल है नरक का, वहां की आयु का, उससे आगे वाले नरक में यानी नीचे वाले नरक में एक समय अधिक उसका जघन्य आयु होती है, तो इसलिए सातवें नरक की जघन्य आयु है 22 सागर और एक समय। पहली पृथ्वी से लेकर छठवीं पृथ्वी तक प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का जघन्य काल क्रम से, अभी पहली पृथ्वी के लिए 10,000 वर्ष, फिर एक समय अधिक एक सागर, या दूसरी पृथ्वी के लिए, क्योंकि पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु एक सागर है, तो दूसरी के लिए एक समय अधिक एक सागर, तीसरी का जघन्य जो है एक समय अधिक तीन सागर, चौथी का जघन्य है एक समय अधिक सात सागर, पांचवी का जघन्य है एक समय अधिक 10 सागर, और छठी का जघन्य एक समय अधिक 17 सागर। अब उत्कृष्ट काल क्रम से बताते हैं। उत्कृष्ट काल क्रम से संपूर्ण एक सागर, ये पहली पृथ्वी के लिए, दूसरे के लिए तीन सागर, तीसरे के लिए सात सागर, चौथी के लिए 10 सागर, पांचवी के लिए 17 सागर और छठी के लिए 22 सागर हैं। सातवीं का तो उन्होंने पहले ही बता दिया। क्रिया कर्म का कितना काल है? तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, क्योंकि सातों पृथ्वियों में सदा सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं, उनका विरह नहीं होता। और खाली पाए जाते ये बात नहीं, असंख्यात होते हैं नरकों में। सम्यक दृष्टियों की संख्या भी हमने पहले देखे थे कि असंख्यात होते। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी कोई समय दर्शन प्राप्त करेगा और अंतर्मूर्त में वापस मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो जघन्य काल एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो जीव मिथ्यादृष्टि या सम्यक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से आकर और सम्यक्त को प्राप्त होकर वहां सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक रहकर अन्य गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, उनके यह काल उपलब्ध होता है। यह भी वही बात बताएं, उत्कृष्ट काल तीन अंतर्मूर्त कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। हाँ, वो नीचे अभी बता रहे, वे तीन अंतर्मूर्त कौन से हैं? देखो, पहले, क्योंकि पहली नरक को छोड़कर बाकी में तो सम्यक्त्व के साथ तो उत्पन्न होता नहीं है, इसलिए उसको कम किया। वहां सम्यक्त्व के साथ देह छूट सकता है छठी तक के, परंतु दूसरी तीसरी वगैरह आगे सम्यक्त्व के साथ जन्मेगा नहीं, इसलिए वो अंतर्मूर्त। ये पूछा है शंकाकार ने, वे तीन अंतर्मूर्त कौन से हैं? समाधान, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त होने का प्रथम अंतर्मूर्त है। अभी यहाँ भी हमने 110 पृष्ठ पर भी देखे थे सातवें नरक के बारे में भी, उसके तो शुरू में भी तीन अंतर्मूर्त लिए थे और अंत में भी लिए थे, इनको अंत में लेने की जरूरत नहीं है। विश्राम करने का दूसरा करो, दूसर हुआ है, दूसरा अंतर्मूर्त है, और विशुद्धि को पूरा करने का तीसरा अंतर्मूर्त है। वो विशुद्धि बढ़ते बढ़ते फिर उसकी सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, इसलिए वहां तीसरा अंतर्मूर्त। शंका, श के ऊपर बिंदी, ये अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से क्यों घटाए जाते हैं? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि इन अंतर्मूर्तों के भीतर सम्यक्त्व का ग्रहण नहीं होता। यानी पहले नरक में तो सम्यक्त्व के साथ जन्म ले सकता है जीव, क्षायिक ही, क्षायिक कहो या कृतकृत्य वेदक कहो, अन्य नहीं। शंका, सातवीं पृथ्वी में अंतर्मूर्तों की हानि होती है, वह हानि एक सागर, तीन सागर, सात सागर, 10 सागर, 17 सागर और 22 सागर में से क्यों नहीं की? ये अंतर मूर्तों की छह चाहिए ना, क्योंकि वहाँ छह हमने देखे थे ऊपर, देखो छन्न अंतमुत्तानम परिहाणे, क्योंकि वहां हमने छह अंतर्मूर्त कम किए थे, सातवी पृथ्वी में वहां आगे शब्द डालना छह अंतर्मूर्तों की हानि होती है। तो यहां क्यों नहीं की, उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन प्रथमादि छह पृथ्वियों में से सम्यक्त्व के साथ निर्गमन संभव है, हो सकता है, किंतु सातवीं पृथ्वी में जाति विशेष के कारण वहां से सम्यक्त्व के साथ निर्गमन यानी वहां से छूटकर अन्य भव में जाना नहीं हो सकता, सम्यक्त्व के साथ की बात है। यही कारण है कि एक आदि सागर में से छह अंतर्मूर्तों की हानि नहीं की। ख्याल में समवधान लिखे अभी रही ने, तो जो हिंदी में शायद लिखते होंगे, पहले तो हमने समवधान किया था जहां वहां तिर्यंच गति में तिर्यंचों में प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है। क्षुद्र भव कहो या क्षुद्रक भव कहो, क्योंकि वो उसकी कम से कम आयु उतनी है ना, तो उतने काल तक एक जीव की अपेक्षा लेना, और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये उत्कृष्ट काल कैसे घटित किया, तिर्यंच गति में है इस अपेक्षा से, हाँ अनादि अनंत भी बता सकते हैं जो नित्य निगोद में, हाँ वेदक ही होगा ना, क्योंकि उपशम में तो मरण होता नहीं है, और पहले वाला तो क्षायिक के साथ जाएगा, क्षायिक के साथ आया है तो क्षायिक के साथ ही जाएगा, उसका तो छूटने का भी सवाल नहीं है, तो वेदक सम्यक तो होता है। नरक में वेदक उपशम और वेदक दो सम्यक्तों की प्राप्ति तो हो सकती है, नए से जो प्राप्त होगे या तो प्रथम उपशम होगा या वेदक होगा, एक बात, और वहां से छूटकर जाते समय वो तो वेदक के साथ ही जाएगा, क्योंकि उपशम के काल में मरण ही नहीं होता किसी जीव का, प्रथम उपशम ही है ना वहां पर। देखो उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, ये तो एकेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अधक कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, यानी एक जीव का जो अधक कर्म है यानी उसके जो औदारिक शरीर के जो निकल गए नौ कर्म वर्गणा, तो एक समय वाली होगी, तो उसकी अवस्था बदल कर अन्य वर्गणा रूप हो जाएगी। यह उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, ये काल की बात हो रही है क्षेत्र की नहीं, क्षेत्र तो लोक से बाहर जाएगा ही नहीं कहीं, पुद्गल परमाणु है वे, लोक को छोड़कर बाहर तो नहीं पाए जाएंगे, काल यहाँ क्षेत्र में नापा है, कल इस पर बहुत चर्चा की थी हमने। इसी प्रकार सब मार्गणाओं में अधक कर्म का काल जानना चाहिए, ये तो पहले बता दिया, सभी मार्गणाओं में काल कितना होगा, जगन एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात लोक, काल की बात चल रही। क्रिया कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त, हमने देखा था ना क्रियाकर्म किसको कहना है, सम्यक दृष्टि को क्रियाकर्म होता है इतना लेना भी, उत्कृष्ट काल कितना होगा, हाँ तिर्यंच गति चल रही है इसलिए तीन पल्ला, हाँ ह हाँ शायिक सम्यक्त्व के लिए पूरा तीन पल्य, और नहीं तो वेदक होगा तो थोड़ा कम, वहां जाने के बाद प्राप्त किया ना, हाँ वहां अंतर्मूर्त तो नहीं कहेंगे, दिन अंतर्मूर्त नहीं होगा, कुछ पृथक वर्ष ऐसा कुछ कहा है। क्योंकि वहां तो सम्मूर्छनों में अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, वेदक सम्यक तो सम्मूर्छनों में एक अंतर्मूर्त में प्राप्त हो सकता है, परंतु वहां तो गर्भज है सभी। इसलिए वो पृथक वर्ष ऐसा कहते हैं, जय यथा योग्य जो होगा उसमें पूरा तीन पल्य प्रमाण। क्योंकि उसका कारण बताते देखो, मनुष्य पर्याय में रहते हुए दान देने से या दान की अनुमोदना करने से तिर्यंचायु का बंध करके और इसके बाद क्षायिक समय दृष्टि होकर जो देवकुरु या उत्तर कुरु में उत्पन्न होकर और वहां तीन पल्य काल तक क्रिया कर्म का पालन देवों में उत्पन्न होता है, पालन नहीं नहीं ये वाक्य भी बराबर नहीं है, कुछ कुछ छूट गया, ऊपर हम पढ़ते हैं, मैं प्राकृत में पढ़ती हूँ नीचे से चौथी लाइन, मनुसम्मी दाने न वा दानानुमोदे न वा तिरिखा हुआ बंदीय पुनो खये सम्मा इट्ठे हो दू न देवकुरु उत्तर देव उत्तर कुरु वेसु उत्पन्न होकर उपज्य तथ तिन्नी पल्लोदवमानी क्रिया कम्मम अनुपाले दूण पालन करके करके चाहिए, पाले दूण है ना, पालन करके देवेशु ववन्नम्मी देवों में उत्पन्न होता है संपूर्ण तिन्नी पल्लोदवम मम इत क्रिया कम्म कालुओ लंबा दो, पालन करके चाहिए। फिर से पढ़ूंगी मैं इसको, देखो मनुष्य पर्याय में रहते हुए दान देने से या दान की अनुमोदना करने से, ये तो लंबी उस वो भोग भूमि वाली आयु का बंध होता है, वहां भोग भूमि में क्यों जन्मता है तो दान के फल में वहां उत्पन्न होता है, और उसने तिर्यंच आयु का भी बंध कर लिया है, बाद में वो सम्यक दृष्टि हुआ, क्योंकि सम्यक तो पहले हुआ होगा तो तिर्यंच आयु का बंध नहीं हो सकता था, सम्यक्त के बाद तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता, आयु का बंध होगा तो देवायु का ही होगा, तो उसने पहले ही तिर्यंच आयु बांध दी थी, बाद में वो क्षायिक समय दृष्टि हुआ, क्षायिक बात डाली ना, क्योंकि वो भोग भूमि में जो सम्यक्त के साथ जन्मने वाला क्षायिक ही होना चाहिए, नियम है, मिथ्या तो अवस्था में उसने अनुमोदना की है। तो देवकुरु उत्तर कुरु किसको कहते मालूम है, हाँ उत्तम भोग भूमि, देव किसको कहना उत्तर किसको कहना, जो उत्तर की तरफ है उसको उत्तर कुरु कहते हैं और जो दक्षिण की तरफ है उसको देवकुरु कहते हैं, अपनी ओर जो है ना वो देवकुरु, ऐरावत की तरफ वाली है जो है हाँ उत्तर कुरु, वो तो मेरु के इमीडिएट नीचे और ऊपर है, ये मेरु के इर्द गिर्द वो तो भद्रशाल वन होता है और उसके नीचे ये उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु, हाँ साइड में तो विदेह क्षेत्र है, हाँ गजदंड पर्वत है, साइड में तो देवारण्य वगैरह होता है, हाँ वो तो भी वेदी कहते हो उसको, भद्रशाल वेदी कहते हैं उसको, वन की वेदी है वो, विदेह क्षेत्र और उसको डिवाइड करने वाली वो, हाँ देखो वो देवकुरु उत्तर कुरु में उत्पन्न होकर और वहां तीन पल्य काल तक ये उत्तम भोग भूमि में क्रिया कर्म का पालन करके, यानी सम्यक दृष्टि है ना अभी वो तो उसको क्रिया कर्म है, देवों में उत्पन्न होता है, भोग भूमि के जीव नियम से देवों में ही उत्पन्न होते हैं, सम्यक दृष्टि है वे सारे ही सौधर्म ईशान में जाते हैं और मिथ्या दृष्टि वो भवनत्रिक में जाते हैं, उस तिर्यंच के क्रिया कर्म का पूरा तीन पल्य काल उपलब्ध होता है। अब ये सामान्य से तिर्यंच की बात की, अभी एक एक की उसमें बात करेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, क्योंकि सामान्य कहा ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य कहा पहले पहले, और अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त किसके लिए कहा, देखो है ना, तीन पंचेंद्रिय लिए, पंचेंद्रिय सामान्य है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी। तो पंचेंद्रिय जो सामान्य लिया तो उनको वहां तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिए, तो उसके लिए जघन्य काल कौन सा होगा, तो क्षुद्र भोगन, और पर्याप्तों के लिए जघन्य काल कितना है, अंतर्मूर्त, भले वो सामान्य पर्याप्त ले या वो योनिमति वाला ले। तो क्षुद्र भव ग्रहण है वो सामान्य के लिए और अंतर्मूर्त है वो पर्याप्तों के लिए। तथा उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, यानी लगातार पंचेंद्रिय तिर्यंचों के भव करते करते कितने किए, पूर्व कोटि वाले किए, और अंतिम भव में वो तीन पल्य वाला आया। इस प्रयोग कर्म उसकी बात चल रही है ना, समवदान की, क्रिया कर्म की बात नहीं चल रही है, क्योंकि क्रिया कर्म कोई भी करेगा और समयत्व के साथ मरेगा तो वो तो देव में चला जाएगा। यहाँ कोई किसकी बात, जो मिथ्या दृष्टि की बात है, लगातार पंचेंद्रियों के पूर्व कोटि के भव किए उसने, तो उसमें भी वो योनिमति के भी ले सकते हैं, पुरुष वेदी के भी ले सकते हैं, नपुसक वेदी के भी ले सकते हैं। तो इस तरह से उसने पूर्व कोटि के भव करके अंतिम भव उसका तीन पल्ले वाला होगा, इसलिए पृथक्त्व कोटि लिया, पूर्व कोटि पृथक्त्व। क्रिया कर्म का काल सामान्य तिर्यंचों के समान है, इतनी विशेषता है कि योनिनियों में क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल दो माह और मुहूर्त पृथक्त्व कम तीन पल्ले। ये बात यहां आ गई, योनिनी यानी वो भी जो स्त्री है तिर्यंच, तो उसमें तो जन्म से तो कोई समय दृष्टि नहीं होगी, कोई भी स्त्री जन्म से समय दृष्टि नहीं होती, तो सम्यक तो अर्लिएस्ट कब प्राप्त होगा, तो दो माह और मुहूर्त पृथक्त्व कम तीन पल्य, क्योंकि सम्यक दृष्टि शायद क्या मिथ्या दृष्टि तीन पल्ले की आयु से वहां उत्पन्न होगी ना, शायद की जरूरत नहीं है भोग भूमि में वहां जाने के बाद वेदक लिए। देखो मिथ्या योनिमति यानी मिथ्या दृष्टि है, अभी तीन पल्ले की आयु लेकर वहां उत्पन्न हुई है, वहां स्त्रियों की आयु कम होगी क्या ज्यादा होगी, सेम होगी ना। मैंने पूछा भोग भूमि में स्त्रियों की आयु ज्यादा होती है कि पुरुषों की, अपने यहाँ क्या देखने में आता है, कम ज्यादा भी पहले भी मर सकते हैं ना, कि कोई स्त्री भी पहले मरेगी, वो उसका आदमी भी मरेगा, वहाँ क्या होता है जुगलिया ही जन्मते हैं और वो साथ ही मरते, इसलिए मैंने पूछा। हाँ दोनों माँ बाप साथ में ही मरते, दोनों ही मरते साथ, और वहां की वो लोक संख्या जितनी उतनी ही रहती हमेशा। हाँ जुगलियों की उत्पत्ति। हाँ तो वही वही देखो क्या कहते हैं, हाँ तीनों आयु कम ज्यादा है, हाँ जुगलिया ही जन्मते हैं वहां पर। देखो कोई मिथ्या दृष्टि तिर्यंच नहीं, योनिमति तिर्यंच तीन पल्ले की आयु सहित जन्मी, और फिर दो मास और मुहूर्त पृथक्त्व कम तीन पल्ले, ये क्यों कम किए, क्योंकि इसके बाद उसको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। हाँ देखो देखो कौन से वो मुहूर्त पृथक, दो मास और मुहूर्त पृथक उसके मिनिमम उसकी क्वालिटी, जैसे यहाँ 8 वर्ष जैसे कहते हैं मनुष्यों में, वैसे वहां लेना है। हाँ देखो, उत्कृष्ट काल 2 माह और मुहूर्त पृथक तो कम 3 पल्ले, क्योंकि वो क्यों है वो बताते हैं। सम्यक दृष्टियों की योनियों में उत्पत्ति नहीं होती, ये तो पहला रूल। और जो मिथ्या दृष्टि जीव उनमें उत्पन्न होते हैं उनके भी जब तक मुहूर्त पृथक्त्व अधिक, मुहूर्त पृथक्त्व में कितने मुहूर्त हो सकते हैं उसके जो, हाँ मुहूर्त पृथक्त्व में जो कुछ यथा योग्य है उसका काल समझना। अधिक 2 माह काल नहीं निकल जाता तब तक सम्यक्त्व का ग्रहण नहीं होता। हाँ इसीलिए 2 महीने लिए मिनिमम, नहीं समर्चन के लिए अंतर्मूर्त है, समूर्चन तो अंतर्मूर्त में वेदक सम्यक तो प्राप्त कर सकते। समय हमने देखा समूर्चन जो महामत्स्य वगैरह भी होते हैं तो अंतर्मूर्त में वहां सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, वो पर्याप्ति वगैरह पूर्ण वहां भी जो यथायोग्य अंतर्मूर्त होगी वहां पर। देखो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अपर्याप्तकों की उसमें भी मिनिमम मैक्सिमम आयु होगी, अपर्याप्तों में भी मनुष्य गति में मनुष्य त्रिक का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान है। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। एक समय सोच रहे हो ना कैसा घटित होगा। देखो श्रेणी में तो नहीं होता है क्रियाकर्म तभी, हाँ तो देखो क्योंकि उतरने वाले किसी अपूर्वकरण उपशामक जीव का अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होकर क्रियाकर्म रूप से परिणमन करके, देखो अप्रमत्त को भी लिया है, अकेले प्रमत्त को नहीं है, प्रमत्त अप्रमत्त दोनों, तो ऊपर से उतरा 8वें में से 7वें में आया और एक समय में दूसरे समय में ही मरण देखा जाता है तो ये एक समय घटित होता है। उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक 3 पल्ल्य है, क्योंकि ये समझ में है उत्कृष्ट काल कैसे घटित होगा क्रियाकर्म का, कि उसका सम्यक तो बना रहे और उसकी मनुष्य पर्याय बनी रहे, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए यानी उसके पहले में पहले मनुष्य आयु की पहले ही बंद होना चाहिए मिथ्यात्व अवस्था में, बराबर, बाद में सम्यक तो प्राप्त होगा और वो क्षायिक समय दृष्टि होगा तब जाके भोग भूमि में जाएगा। तो कहते हैं उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि का त्रिभाग, त्रिभाग क्यों लिया, क्योंकि पहले में पहले आयु का बंध कब हो सकता है, त्रिभाग में हो सकता है, इसलिए उसका लंबा काल लेना है ना क्रियाकर्म का, इसलिए पूरा त्रिभाग लिया। क्योंकि 28 कर्म की सत्ता वाला जो मनुष्य आयु में पूर्व कोटि का त्रिभाग शेष रहने पर भोग भूमि संबंधी मनुष्य आयु का बंध करने के बाद, ओ यहाँ भी वो आगे वाला क्रियाकर्म का काल बढ़ाना था इसलिए पहले ही उसको 28 कर्म की सत्ता वाला लिया, यानी सादी मिथ्या दृष्टि लिया, सादी मिथ्या दृष्टि है ये, पहले सादी की क्या जरूरत है, अनादि भी हो सकता था ना। हाँ तो बाद में उसको ये जो प्रोसेस में ज्यादा टाइम चला जाता हाँ वो कम करने के लिए। तो कहते हैं 28 कर्म की सत्ता वाला जो मनुष्य आयु में पूर्व कोटि का त्रिभाग शेष रहने पर भोग भूमि संबंधी मनुष्यायु का बंद करने के बाद अंतर्मूर्त काल द्वारा सम्यक्त को ग्रहण कर और तदनंतर क्षायिक सम्यक्त को प्रारंभ कर अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि के त्रिभाग काल तक क्रियाकर्म का पालन करता है। इसके कितना गुणस्थान हो गए? मनुष्यायु बांध ली है उसने, मनुष्यायु बांधे देवायु है सॉरी नरकायु बांधे या तिर्यंचायु बांधे, चौथे गुणस्थान से आगे नहीं जाएगा वो। तो पश्चात मरकर देवकुरु या उत्तर कुरु में उत्पन्न होकर और वहां तीन पल्ल्य प्रमाण काल तक जीवित रहकर देवों में उत्पन्न होता है। उसके क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त न्यून पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक तीन पल्ल्य प्रमाण उपलब्ध होता है। कहाँ पर? अच्छा अच्छा हाँ 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 आपने ये हमने जो 112 पर अंतिम लाइन देखी थी वो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में की बात 113 में देखो 113 पर नीचे से तीसरी लाइन पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त को के अच्छा एक जीव की अपेक्षा जो घटित किया था उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त जो बताया था वो उसके लगातार भव की बात है ना, यानी लगातार पंचेंद्रिय पर्याप्त के भोग करेंगे। देखो उनको ये अंतर्मूर्त कैसे घटित होगा, उत्कृष्ट काल लब्धि अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बताया। तो मैंने यहाँ 112 पृष्ठ पर नीचे पर्याप्तों का वो तो वहां तो हमने वो अलग बात की, यहाँ जो है वो लगातार उसके अपर्याप्तों के भोग कितने हो गए उसकी बात है। पंचेंद्रिय पर्याप्त फिर पंचेंद्रिय पर्याप्त फिर पंचेंद्रिय पर्याप्त कितने हो सकते लगातार, कितने भव हो सकते पंचेंद्रिय अपर्याप्त के लगातार भव? 8 संगी के और 8 असंगी के। हाँ। एक अंतर्मूर्ति अधिक से अधिक उसके इतने भव होते तो अंतर्मूर्ति ही रहेगा ना उसका ये। हाँ। सभी जीवों के मिलकर जो हमने देखे थे वो 66,336 एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के, उसमें लगातार पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त के कितने हो सकते हैं? हाँ संगी के 8 और असंगी के 8। तो ये उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त जो बताया है वो लगातार अपर्याप्त भवों की अपेक्षा से बताया है, और क्षुद्र भव ग्रहण कहा है वो एक भव की अपेक्षा कहा है। देखो अपर्याप्तों में तो सारे नपुंसक वेद हैं। वो पर्याप्तों में हमने पृथक्त्व कोटि पूर्व में तो हमने घटित किया था। अच्छा है आप प्रश्न पूछते तो मेरा भी जरा रहता है। अच्छा हम देखो अभी हम आगे के पृष्ठ पर जाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकों के भी क्रियाकर्म का काल कहना चाहिए। मनुष्यनियों में क्रियाकर्म का काल इसी प्रकार ही होता है। इतनी विशेषता है कि अब इन पर भी भोग भूमि वाले मनुष्यनी में घटाएंगे। हाँ तो सम्यक्त के साथ नहीं जाएंगे, तो वहां की इतनी विशेषता है कि इनमें क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल 9 माह। ये मनुष्यों में तो गर्भ का काल 9 माह है ना, तो 9 माह और 49 दिन कम तीन पल्ले है, आगे 49 दिन लगे वहां, नहीं क्योंकि वहां क्या है 49 दिन यानी कितने साथी उन सात दिन की उनकी वो सब स्टेप्स है और 49 दिन में युवा हो जाते हैं। हाँ, एक हफ्ते में वो अंगूठा चूसते हैं, एक हफ्ते में राय रेंगते, ऐसा वो आता है ना सारा वर्ण, तो 7 हफ्तों में वो जवान हो जाते हैं। तो 9 काल और 49 दिन वो तीन पल्ले में से इसको घटाना। ईर्ष्यापथ कर्म और तपक कर्म का काल, देखो तिर्यंचों में वो 2 माह लिखे थे और आगे भी वो मुहूर्त पृथक्त्व कहे थे ना, जैसे यहाँ 7 हफ्ते लगे, वहां कुछ मुहूर्तों में वो होते होंगे, वो तिर्यंचों में, तिर्यंच भी अलग अलग प्रकार के होंगे वहां पर, तो मिनिमम गर्भ वाले वो 2 महीने वाले कोई तिर्यंच होंगे उसकी अपेक्षा वहां बात की है। ईर्ष्यापथ कर्म और तपक कर्म का काल, ये मनुष्य है इसलिए भी यहाँ ईर्ष्यापथ कर्म और तपक कर्म लिए हैं। नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा ओघ के समान है, यानी नाना जीवों की अपेक्षा तो हमेशा ही रहेगा। ईर्ष्यापथ काल एक जीव की अपेक्षा जघन्य ईर्ष्यापथ का काल कितना होगा? हाँ, एक समय, कैसे विनोद भाई ने बताया, एक समय कैसा घटित होगा? देखो ईर्ष्यापथ 11वें में है, तो 11वां शुरू हुआ और एक समय में मरण को प्राप्त हुआ, तो ईर्ष्यापथ का जघन्य काल एक जीव की अपेक्षा, और अधिक से अधिक काल कितना होगा मंजू बताइए? 13वें में ही ज्यादा काल हो सकता है, बाकी तो अंतर अंतर मुहूर्त वाले है, 11वां कहो या 12वां कहो, तो ये अंतर मुहूर्त तक वहां रहा 12वें में, क्षपक श्रेणी चढ़कर 12वें में आया, एरिया उसका चालू हो गया, फिर 13वें में आया, तो लंबा काल वहां, तो पूर्व कोटि वाले आयु वाला कोई जो है 8 साल में वो संयम प्राप्त किया, क्षपक श्रेणी चढ़ा, 12वें गुण स्थान को प्राप्त होते ही ईर्ष्यापथ कर्म चालू हो गया, फिर 12वें के अंतर्मूर्ति के बाद 13वें में आ गया, तो पूरा अंतिम 14वां छोड़कर वो तो 13वां का काल, 14वें में भी ईर्ष्यापथ तो 13वें तक है, तो अंतिम अंतर्मूर्त छोड़ा और पहले 8 साल और जो कुछ छोटा समय एक अंतर्मूर्त वहां भी छोड़ा, तो इतना लंबा काल उसका होगा। तो यहाँ क्या कहते, ये तो ओके समान है, वहां तो बात उन्होंने बताई थी। इसको तपक कर्म का भी ऐसा ही समझना, तपक कर्म तो कहाँ से शुरू होता है? सही है, 6ठे से 14वें तक। मनुष्य अपर्याप्तकों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना करो, उसको कितना हुआ, कितना काल है? अपर्याप्तकों की बात बताइए, तो नाना जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा? याद है आपको, उन्होंने उत्तर बता दिया, वो बराबर है, आप अभी बताओ, आपने नहीं सुना देवेंद्र भाई आप? हाँ, ये मनुष्य अपर्याप्त जो है वो सांतर मार्गणा है, यानी नाना जीव उसमें है, परंतु ऐसा कभी प्रसंग आता है उसमें एक भी जीव नहीं है, कम से कम एक समय के लिए ऐसा गैप पड़ेगा, और अधिक से अधिक वो तो वो भी पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, पर लगातार रहने का काल कितना है? उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक। अंतर की बात तो अगले अनुयोग में आने ही वाली है, अभी हम काल की बात करेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। यहां भी वो लगातार मनुष्य अपर्याप्त रहने की बात है, लगातार कितने भो हो गए? मनुष्यों में अभी संगी असंगी नहीं लगाना है मनुष्य, हाँ मैं वही मैं पूछ रही हूँ, मनुष्यों के कित हाँ अभी 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 स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं लगाना आठ ही लगातार की बात है, आठ ही बहुत है। वो तो ऐसा ना, बीच में पर्याप्त होके फिर अपर्याप्त हो सकता है। अब देवगति की बात करेंगे। देवगति में, देवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। लगातार अपर्याप्त अवस्था प्राप्त होने का, हाँ अपर्याप्त है ना, इसलिए यानी वो मनुष्य रहा अपर्याप्त रूप से, मनुष्य 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 रहा, इसकी बात। अब देवों की बात चल रही है सेकंड लाइन। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। इसी प्रकार क्रिया कर्म का भी काल है। इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। भवनवासी, वानव्यंतर और ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्रम से, अभी क्रम से बता रहे हैं। पहले भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी लिए, तो उसमें 10,000 वर्ष भवनवासी में, 10,000 वर्ष व्यंतरों में, और ज्योतिषियों की जघन्य आयु भी ज्यादा है। कितनी है? पल्लवपम का 8वां भाग है। पहला है भवनवासी का, हाँ ज्योतिष के। देखो भवनवासी में भी 10,000 वर्ष है, व्यंतर में भी 10,000 वर्ष है, और ज्योतिषियों में कम से कम आयु है पल्ले का 8वां भाग। फिर अभी वो विमानवासियों की बात, पल्ले के असंख्यात भाग अधिक एक पल्ल्य, सौधर्म ईशान यानी एक और दो, एक समय अधिक दो सागर, क्योंकि सौधर्म ईशान की उत्कृष्ट आयु 2 सागर है और ऊपर के स्वर्ग की जघन्य आयु 2 सागर और हाँ एक समय। अब यह सौधर्म ईशान में वो साधिक 2 सागर होती, उसकी बात नहीं यहाँ नहीं लेनी है, क्योंकि हमको ऊपर की मिनिमम आयु लेनी है ना। हाँ यानी तीसरे चौथे सनत कुमार महेंद्र के लिए एक समय अधिक 2 सागर। 5वां 6वां कौन सा है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के लिए एक समय अधिक 7 सागर। हम नाम ही संख्या ही लेंगे, लिखेंगे वहाँ 7वें और 8वें लांतकापिष्ट एक समय अधिक 10 सागर। 9वें और 10वें एक समय अधिक 14 सागर। 11, 12 के लिए एक समय अधिक 16 सागर। 13, 14 के लिए एक समय अधिक 18 सागर और 15, 16 के लिए एक समय अधिक 20 सागर। फिर एक समय अधिक 22 सागर ग्रेवेक वाले, हाँ एक नंबर का ग्रेवेक, एक समय अधिक 23 सागर। अभी एक एक सागर बढ़ाते जाना, यानी ग्रेवेक नंबर 2, एक समय अधिक 24 सागर, ये 3 नंबर के ग्रेवेक के लिए, 4 नंबर के ग्रेवेक के लिए एक समय अधिक 25 सागर, 5वें ग्रेवेक के लिए एक समय अधिक 26 सागर, 6ठे ग्रेवेक के लिए एक समय अधिक 27 सागर, 7वें ग्रेवेक के लिए एक समय अधिक 28 सागर, 8वें ग्रेवेक के लिए एक समय अधिक 29 सागर और 9वें ग्रेवेक के लिए, ये जघन्य आयु की बात चल रही है, एक समय अधिक 30 सागर। फिर अनुदिशों में, अनुदिशों की जघन्य आयु नव अनुदेश है ना वहाँ पर, एक समय अधिक 31 सागर, और ऊपर कौन से है, अनुत्तरों में एक समय अधिक 32 सागर जघन्यायु। सर्वार सिद्धि में 33 होती है, सर्वार सिद्धि तक यानी वहाँ पर अनुत्तर तक समझना चाहिए। ठीक है हाँ, उत्कृष्ट काल, अभी उत्कृष्ट काल बता रहे हैं। डेढ़ सागर ये किसका होगा, भवनवासी का, साधिक एक करना, ये हुआ है ना एक पल्ल्य, ये व्यंतरों का, फिर ज्योतिषी का साधिक एक पल्ल्य, ये साधिक क्यों लिखा, मुनि होने की जरूरत नहीं है, पहले अधिक देवायु बांधी थी और उसमें बाद में परिणामों के कारण उसका घात हुआ, तो घात होता है तो नीचे के जो देव है उसमें थोड़ी ज्यादा आयु होती है, थोड़ी है उसके हाईएस्ट से थोड़ी ज्यादा, यानी यहाँ की जो हाईएस्ट है वो एक पल्ले वाली है, व्यंतरों की ज्यादा मैक्सिमम आयु है एक पल्ले की, उसमें थोड़ी ज्यादा, ज्योतिषियों की एक पल्ले है और वो थोड़ी ज्यादा, हाँ गाता है। अभी सौधर्म ईशान के लिए अंतर्मूर्त कम 250 सागर, हाँ ज्योतिषी और व्यंतर साधिक एक पल्ले हुआ, और सौधर्म ईशान अभी एक दो आंकड़े डालने तो, हाँ तो अंतर्मूर्त कम 250 सागर, ये अंतर्मूर्त कम क्यों कहा, 250 सागर रख देते ना अंतर्मूर्त तो क्यों घटाए, घातायुष के इतने क्यों होता है, वो पल्ले में कुछ पल्ले का कुछ कम, हाँ उनका ऐसा कहना है कोई मुनिराज है और संयम से भ्रष्ट हो गए, देखो संयम से भ्रष्ट होने के लिए ये आधा सागर ज्यादा है, और सम्यक तो से ही भ्रष्ट हो जाएगी, मिथ्या दृष्टि की जो घातायुष्क है वो पल्ले का कुछ काल ऐसा रहता है, उसमें डिफरेंस है दोनों के, मुझे ऐसा लगा कि अंतर्मूर्त वो मिथ्यात्व के साथ जन्मेगा ऐसा है, बाद में सम्यक तो प्राप्त करेगा, फिर भी वो किसकी बात चल रही, कौन से कर्म की बात चल रही है, प्रयोग कर्म की बात चल रही है, यानी वो अंतर्मूर्त कम ही 250 सागर है, यानी यहाँ सम्यक्तों का कोई संबंध ही नहीं है, हाँ मिथ्या दृष्टि को असंख्यात्व भाग ज्यादा होता है और सम्यक दृष्टि को वो तो आधा सागर ज्यादा होता है, उसमें अंतर्मूर्त जो कुछ कम बताए, फिर अंतर्मूर्त कम 750 सागर, ये तीसरे चौथे के लिए, अंतर्मूर्त कम 1050 सागर पांचवे छठे के लिए, अंतर्मूर्त कम 1014 सागर सातवें आठवें के लिए, अंतर्मूर्त कम 1016 सागर नौवे दसवें के लिए, अंतर्मूर्त कम 1018 सागर ग्यारहवें बारहवें के लिए, संपूर्ण 20 सागर क्यों, वहां घातायुष के नहीं होते हैं, 13-14 फिर 15-16 के लिए 22 सागर, फिर 23 सागर किसकी, ग्रहवेग पहला, ग्रहवेग दूसरे के 24 सागर, ग्रहवेग तीसरे 25 सागर, ग्रहवेग चौथा 26 सागर, ग्रहवेग पांचवा 27 सागर, कॉमा लगाना। ग्रहवेग छठा 28, ग्रहवेग सातवा 29, ग्रहवेग आठवा 30 और नवे ग्रहवेग के 31 सागर, ये हमें पता है ना। ग्रहवेग को में तो एक एक सागर का डिफरेंस है। फिर अनुदिशों में 32 सागर और सर्वार सिद्धि 33 सागर। हाँ, 33, पांचों में 33 सागर जो है सर्वार सिद्धि में होता है, सर्वार सिद्धि में ही 33 सागर होता है। फिर भी पांचों को इकट्ठा लेंगे तो हम वो अनुत्तरों में ऐसा कह सकते हैं। भवनवासियों से लेकर उपरिम ग्रहवेग तक के देवों में क्रियाकर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल भवनत्रिक में क्रम से 1.5 सागर, 1.5 पल्ल्य और 1.5 पल्ल्य है। अभी उसमें से वो सम्यक तो प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक काल है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भवनत्रिकों में तो कोई सम्यक्तों के साथ उत्पन्न होगा नहीं। ये तीनों ही काल 6 पर्याप्तियों की समाप्ति का 1 अंतर्मूर्त, विश्राम का 2 अंतर्मूर्त और विशुद्धि की पूर्ति का 3 अंतर्मूर्त, इन तीन न करना उसको 3 अंतर्मूर्तों से हीन है। अर्थात ये 3 अंतर्मूर्त घटा देने पर अपना अपना उत्कृष्ट काल होता है। ऊपर अब जो हमने उत्कृष्ट काल देखा है उसकी बात है, इसके आगे आग हुआ है। आगे नौ ग्रहवेग तक क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल प्रयोग कर्म के उत्कृष्ट काल के समान है, यानी अपने अपने उत्कृष्ट आयु प्रमाण है, क्योंकि जन्म से ही सम्यक दृष्टि होगी ना, वहां पर सौधर्म से लेकर वहां तक ऊपर। अर्ची मालिनी, वज्र वैरोचन, सोमरुचि, अंक स्फटिक और आदित्य, इन 9 अनुदिशों में, ये अनुदिशों के नाम है विमानों के, क्रिया कर्म का कितना काल है? तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय अधिक 31 सागर है और उत्कृष्ट काल 32 सागर है। वहां तो सारे सम्यक दृष्टि ही जन्मते हैं, इसलिए जो जघन्य आयु है वो जघन्य काल में जघन्य आयु ली, एक समय अधिक 31 सागर। ग्रहवेयकों की उत्कृष्ट है उसमें एक समय मिला दो तो अनिदिशों की जघन्य है और उत्कृष्ट काल 32 सागर है। विजय वैजयंत जयंत, एक कॉमा लगाने बीच में, और अपराजित, इन 4 अनुत्तरों में क्रियाकर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय अधिक 32 सागर है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, यह भी 33 सागर लिया उन्होंने। सर्वार सिद्धि विमानवासी देवों के क्रियाकर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है और एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, यानी वहां कोई जघन्य नहीं होती है। हाँ, 33 सागर की आयु होती वहां पर। तो ये गति मार्गणा समाप्त हुए। अब इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एकेंद्रियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की ये समझ में नहीं आए तो पूछना, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो कि आवली के असंख्यात वे भाग मात्र पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहते ना, तो कौन सा वाला असंख्यात वो भी बता दिया असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कौन सा असंख्यात? आवली के असंख्यात वे भाग वाला असंख्यात। बाद अभी उसमें भी बादर एकेंद्रियों की अलग से बात करते हैं। बादर एकेंद्रियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भोग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल, ये बादर एकेंद्रियों का उत्कृष्ट काल बताएंगे, यानी लगातार बादर एकेंद्रिय पर्यायों में घूमने का काल। अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, हमने पहले देखा था इसको, कल भी इसकी चर्चा की थी, जो असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के बराबर है। ये क्षेत्र का माप है। अंगुल के असंख्यात वे भाग में जितने प्रदेश है उतने समयों कितने उसके उतने समय है, तो हमें कैसे समझना कितने समय है? तो उसी समयों को हम कल्पकालों में गिनेंगे तो असंख्यात कल्पकाल हो जाएंगे। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कहो या कल्पकाल कहो, एक ही बात है ना। उतने कल्पकाल ने उतने समयों के कल्पकाल करो तो कितने हो गए? तो हाँ, ये माप है ना, क्षेत्र में हमने काल का माप बता दिया। हाँ, असंख्यात कल्प बताया ना उन्होंने, असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के बराबर है, क्योंकि हमें क्षेत्र में प्रदेशों का प्रमाण ख्याल में नहीं आता है। आकाश के प्रदेश कितने सूक्ष्म हो गए और वो समय भी कितना सूक्ष्म है, कि प्रदेश भी सूक्ष्म है और समय भी कितने सूक्ष्म, इतने समय लेंगे, हमें लगता है इतने से ही समय लिए, इतने से नहीं लिए अब बादर एक केंद्रीय पर्याप्त, पहले तो परावर्तन यहाँ कहाँ परावर्तन की बात, वो बहुत ऊपर, वो तो बहुत ऊपर चला गया, अभी हम अंगुल की बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, पुद्गल परावर्तन ऊपर चला गया। देखो ऊपर जो बात की थी वो एकेंद्रियों की सामान्य बात की थी, वहां सामान्य एकेंद्रिय सूक्ष्म बादर सब आ गए, उसका काल कितना है? तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। अब यहाँ बादर एकेंद्रियों की बात है, वो तो ऊपर की बात अलग है। अब यहाँ जो दूसरी बात हो रही है, अभी अकेले बादरों की बात है, यहाँ सूक्ष्म को नहीं लिया है, तो सूक्ष्म में लगातार बादर में रहने का काल कितना है? तो उसके लिए कहते कि असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, वही माप क्षेत्र में बताना है तो कैसे बताएंगे? तो कहेंगे अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल, काल हो ख्याल में आया? हाँ। अब कहते बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, अभी अभी जो हमने अंगुल का असंख्यात भाग देखा था तो बादर एकेंद्रिय इन जनरल कहा था, सामान्य, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को लिया था, अभी अकेले पर्याप्तों की बात करेंगे। बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, पर्याप्तकों का लाइफ स्पैन जघन्य में जघन्य अंतर्मूर्त होता है। और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, परंतु वो एक जीव के एक भाव की अपेक्षा ली उन्होंने, एक भाव है संख्या, 22,000 वर्ष होते हैं ना उसके, नहीं मगर वो एक ज्यादा होना चाहिए, बादर टू बादर, बादर टू बादर बहुत ज्यादा होना चाहिए। संख्या हजार ही होता है बादर टू बादर। आप उसकी घोटाला कर रहे हैं, वहाँ एक इंद्रिय इन जनरल बात है, फिर बादर इन जनरल बात है, पर्याप्त पर्याप्तों के साथ में, फिर अभी अकेले बादर की बात है, पर्याप्तों की। हाँ होगा ना, हाँ संख्यात हजार वर्ष, और वो फिर सूक्ष्म में बीच बीच में जाएगा तो वो तो फिर वो ये उस तरह से ज्यादा घटित होगा। वहाँ बादर एक इंद्रिय इन कॉमन है, वहाँ पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है, ख्याल है ना। हाँ अब यहाँ अकेले पर्याप्तों की बात चल रही है, तो बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों की उत्कृष्ट आयु भी हम देखते हैं ना 22,000 वर्ष, तो हो सकता है लगातार में भी उन्होंने वो संख्या हजार में ले लिया है। फिर भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अकेले अभी सूक्ष्म की बात हम देखेंगे तो असंख्यात लोग कहेंगे, अकेले सूक्ष्म की और बादर सूक्ष्म की मिलकर वो तो फिर पुद्गल परिवर्तन असंख्यात हो जाएंगे। तो ये काल संख्यात हजार वर्ष है, वो फिर देखना पड़ेगा। वो तो काल में अभी लिखा तो है उन्होंने ऊपर, यानी लगातार भी वो संख्यात हजार ही हो जाएगी ना। संकेत जानी वस्तु सहस्रानी, क्यों सभी एकेंद्रियों में बादर एकेंद्रियों में घूमेंगे तो भी संख्यात ही होंगे। काल का इन्हें पांचवा भाग दे निकाल के देखना पड़ेगा, पांचवी पुस्तक आपके हाथ में आएगी। हाँ ऊपर के खाने में नंबर पांच, एक मिनट वो लपेटा हुआ कौन सा नंबर है, पांचवा राइट साइड में। वो लपेटा हुआ होगा शायद, कोई भी निकालना चलेगा। दिख रहा है आपको पांच, उनको दिख रहा है ऊपर, ऊपर से तीसरा हो। हाँ जाने दो, कल देखेंगे, नहीं तो नीचे तो एक है। हाँ ये ऐसा ही है, यानी वो लगातार एकेंद्रीय 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 बादर एकेंद्रीय की बात बता रहे ना यहाँ पर। तीरियंश गति में देखना है ना हमको, वो भी मार्गणा में, मार्गणा में बादर एकेंद्रीय जीवों का ये अंतर की बात आ गई, हमको काल देखना है, ये अंतर से ही शुरू हुआ क्या। ओ अंतर आया उसमें पुस्तक पांचवे में जाने दो अभी काल काल अभी कल ही देखेंगे, चार चार देखना पड़ेगा अभी, रहने दो फिर। हाँ चार तो मिल जाता, चार तो था ऊपर से ही देखा था, चार चार हमने निकाला था ना। ये लपेटा हुआ चार होना चाहिए ना, दो है। डार्क ब्लू था चार नंबर, चार नंबर बीच में निकाला था मैंने। राइट साइड में कौन सा है ऊपर का? चलेगा कोई भी? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। हाँ ये आपका ही है, चलेगा पर। हाँ एक ही बात है अपना होता है ना इसमें देखा है विषय विषय सूची में। आदेश से तिर्यंच गति में काल, आदेश से काल प्रमाण। हाँ ये विषय अनुसूची है ना 43 के आगे, इसमें तिर्यंच गति में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, वो तो उसमें आया गति मार्गण है, वो इंद्रिय मार्गणा में देखना है। एक के इंद्रियों में बाद्र के इंद्रियों का नाना एक जीव की अपेक्षा जगन और उत्कृष्ट काल 388-389 और पर्याप्तकों की 390 में 390 निकालना पेज। बादरे के लिए पर्याप्तक जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है हा? और अभी उत्कृष्ट काल बताएंगे। संख्यात हजार वर्ष, पृथ्वी का एक जीव में 22,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु सूत्र सिद्ध है। यानी उनका कहना है कि बहुत बार उसमें उत्पन्न होगा, पृथ्वी कायिक में तो 22,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है। तो शंकाकार ने पूछा था कि बार बार उसमें भ्रमण करेगा तो असंख्यात वर्ष क्यों नहीं हो सकता, तो उस पर उत्तर दिया था कि उसमें असंख्यात बार एक जीव की उत्पत्ति असंभव है। यानी वहाँ संख्यात हजार वर्षों के बाद वो फिर अविवक्षित पर्याय में चला जाता है और फिर वहाँ आता है। हाँ संख्यात हजार, 22,000 नहीं, 22,000 वर्ष की तो एक आयु है। हाँ यानी 22, हाँ तो वो तो मान लेते कि 100,000 भी ले लेंगे ज्यादा भी, तो भी वो संख्यात हजार ही कहेंगे ना। अभी हजार लगाओ, हजार के पहले कितने भी संख्यात बनाओ, हजार से ज्यादा भी होगा और उसको हजार कहेंगे तो भी चलेगा ना। 10,000 बार हजार कहोगे तो भी वो संख्यात हजार कहोगे, इस अपेक्षा से वहां कहा। तो अपने विकल्प है तो देख लेना अच्छा है ना। उत्तर हो तो संख्यात हजार ही होता है, कितने भी भव करेंगे तो असंख्यात नहीं हो जाता उस। हाँ लगातार बादर पर्याप्त बादर पर्याप्त होगे तो संख्यात हजार ही होते, वो संख्यात का प्रमाण नहीं। 393 पृष्ठ पर वो प्रश्नोत्तरी चली थी ना, वहां देखो 116 सूत्र उसके ऊपर लिखे हैं तीन लाइन में। अविवक्षित कोई जीव यानी अन्य पर्याय में से बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ, संख्या सहस्र वर्ष प्रमाण अधिक से अधिक काल तक उनके परिभ्रमण करके पुनः अविवक्षित जीवों में चला गया। अविवक्षित मैंने अभी बादर अपर्याप्त हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, कुछ भी होगा। 393, क्योंकि बादर एक इंद्रियों में रहने का काल कितना है उसका, अभी हमने देखा था। बादर एक इंद्रियों में, पर्याप्तों में नहीं, बाद हाँ अंगुल क्या, यानी असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी किसमें, बादर एक इंद्रिय इन कॉमन, बादर पर्याप्तकों में संख्यात हजार। हाँ तो बीच में अपर्याप्त का एक भी भव करेगा तो बीच बीच में अपर्याप्त के करता रहेगा, फिर पर्याप्तों में आएगा, इस तरह से वो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक चलेगा उसका। परंतु लगातार बादर में रहने का काल संख्यात हजार वर्ष ही है, ये बात क्लियर हो गई ना। अभी आगे पढ़ेंगे, अब बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तों की बात बता रहे हैं। बादर एकेंद्रीय पर्याप्त हमने देख लिए संख्यात हजार वर्ष। प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि वो अपर्याप्तों की बात है अभी, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सूक्ष्म एकेंद्रियों के ये अपर्याप्तों की बात है, यानी अपर्याप्तों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त और पर्याप्तकों का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष, और दोनों का मिलकर उत्कृष्ट काल असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। तो बीच बीच में पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त होते, पर लगातार पर्याप्त ही रहे या लगातार अपर्याप्त ही रहे, तो लगातार अपर्याप्त अंतर्मूर्त और लगातार पर्याप्त संख्या सस कौन से, वो तो बादर और सूक्ष्म का मिलकर वो अलग, हाँ उसकी तो बात ही नहीं ली अभी हमने, अब सूक्ष्म की बात उठा रहे। तो सूक्ष्म एक इंद्रियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, ये सूक्ष्म एक इंद्रिय पहले जनरल लिया, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। सूक्ष्म एक इंद्रिय की बात चल रही, कहाँ गई ऊपर में, हाँ सूक्ष्म एक इंद्रिय इन जनरल, जघन्य काल अंत ये क्षुद्र भव ग्रहण, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त की बात नहीं ले ली अभी, अब वो बताएंगे पर्याप्त अपर्याप्त की बात। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य, वो जघन्य दिख रहा है, जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि पर्याप्तों की आयु जो है सूक्ष्म पर्याप्तों की वो अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है। अभी यहां भी वो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त घटित किया है लगातार भी, हाँ सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तों की बात अभी कहेंगे। प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। देखो इसको भी उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, और सूक्ष्म पर्याप्तों का भी उत्कृष्ट काल यानी काल, हाँ और वो दोनों का मिलकर बदल के सूक्ष्म एक इंद्रियों का काल कितना देखा, असंख्यात लोक प्रमाण, काल की बात है, असंख्यात लोक में जितने प्रदेश है उतने समयों का काल कितना होगा, क्योंकि हमने अंगुल के असंख्यात भाग में असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी देखी, तो अभी उसको इमेजिन करो, तो वो पलटते रहते इसमें से पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त। तो अकेले सूक्ष्म का काल हमने कितना देखा, असंख्यात लोक प्रमाण, अकेले बादर का, हाँ अंगुल का असंख्यात होगा, आउली यहाँ नहीं ले रहा उसकी बात अभी नहीं ले, अकेले बादर, हाँ और फिर बादर और सूक्ष्म का मिलकर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन क्या है। हाँ, अब आगे द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों के, वो तो बहुत बड़ा है, अनंत काल है। असंख्यात लोक प्रमाण में भी असंख्यात ही काल होगा। हाँ, बाधक में की कंपैरिजन में सूक्ष्म का बहुत बड़ा है, वो अंगुल का असंख्यात भाग और ये असंख्यात लोक है, और दोनों का आपस में मिला जो, हाँ, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, इन्हें एक इंद्रियों का काल। अब द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जीवों के, जब जीवों के कहा था सामान्य से, और उन्हीं के पर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, ये सामान्य के लिए और अंतर्मूर्त ये पर्याप्त के लिए। उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, यानी लगातार इसमें जन्मने का काल। द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय अपर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल 80, 60 और 40 अंतर्मूर्त प्रमाण है। एक मिनट, 80 अंतोमूर्तम अंतोमूर्ता एक्चुअली जब हमने पढ़ा था, एक अंतर्मूर्त में इनके इतने लगातार होते भव, उतने अंतर्मूर्त प्रमाण कहा इसको। एक अंतर्मूर्त में कितने भव है उसकी ये संख्या है। उनको वही कहना होगा शायद, क्योंकि ऊपर लिखा ना, ये जो ऊपर जो साइन किए ना, असीधी सट्ठी ताल अंतोमूत्तम, उसको नीचे कहा अंतोमूत्ता, यानी अनेक वचन किए उन्होंने। एक अंतर्मूर्त में उनके अधिक से अधिक भव इतने होते, ये बात अपने पता है। लगातार अगर उसी पर्याय में द्विंद्रिय में ही लगातार हो तो कितनी बार होगा, एक अंतर्मूर्त में 80 बार, तो हर एक का एक एक अंतर्मूर्त काउंट करो तो भी हम 80 अंतर्मूर्त कहेंगे। हाँ, बहुवचन हो जाएगा, एक वचन है। हाँ, द्विंद्रिय वाला लगातार अपर्याप्तों में द्विंद्रिय अपर्याप्त होगा तो 80 बार होगा। तो एक एक का उसका अंतर्मूर्त गिना है, फिर भी वो कौन सा अंतर्मूर्त, वो क्षुद्र भव वाला अंतर्मूर्त। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय हुआ पंचेंद्रिय, प के ऊपर बिंदी, पर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा। पहले पंचेंद्रिय इन जनरल सामान्य में और फिर पर्याप्त को लिया, तो एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मूर्त है, तथा उत्कृष्ट काल, तथा क्यों कहा, अंतर्मूर्त रह गया क्या बीच में, उत्कृष्ट काल के बाद तथा क्यों लिखा, तथा की जरूरत नहीं है। उक्कसेन सागरोम संसम, उत्कृष्ट काल, ये तथा की जरूरत नहीं है। पूर्व कोटि पृथक्त्व, ये किसकी बात चल रही, याद है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्तों की। कौन से गति की बात चल रही है? हाँ, सभी इंद्रिय मार्गणा में चारों गति के पंचेंद्रिय। तो उत्कृष्ट काल, पूर्व कोटि पृथक्त्व, अधिक हजार सागर और सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। पंचेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल, सभी पंचेंद्रिय जब हमने कहा तो सभी पंचेंद्रिय ना, देखो ऊपर पढ़ा। हाँ, पर्याप्त पंचेंद्रियों की बात है ये। हाँ, पहले तो देखो, एक जीव की अपेक्षा जघन्यकाल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मूर्त है। हाँ, लब्धि पर्याप्त की बात है। और तथा उत्कृष्ट काल, पूर्व कोटि पृथक्त्व, अधिक हजार सागर और सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। इसमें अब सामान्य में कहो या पर्याप्तों में, उत्कृष्ट काल तो एक ही होगा ना। देखो, सामान्य में जघन्य काल तो अपर्याप्तों का ले लेंगे, और सामान्य में ही उत्कृष्ट काल पर्याप्तों का ले रहे हैं, तो इसलिए उनको दोनों को मिलकर उत्कृष्ट काल तो एक ही कहेंगे। वो क्या है? पूर्व कोटि पृथक्त्व, अधिक हजार सागर और सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। ये पंचेंद्रियों की बात है ना। समय है क्या अभी? अभी हमने कितना कहा, 390 कुछ लिखा था, देख 93 तक देखा था, सूक्ष्म विकलेंद्रिय। अभी हमको पंचेंद्रिय पर्याप्त वगैरह की चाहिए, 400 पृष्ठ पर हैं। देखो, उत्कृष्ट उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक सागरोपम सहस्र और सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण है। उसके लिए उन्होंने कहा, कोई एक जीव एकेंद्रिय विकलेंद्रिय से आकर पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर अपनी स्थिति तक रहकर अन्य इंद्रिय को चला गया, पंचेंद्रिय में से अन्य इंद्रिय को चला गया। यहां पर एक ही सागरोपम सहस्र के अपने अंतर्गत बहुत्व को देखकर सागरोपम सहस्र ऐसा सूत्र में बहुवचन का निर्देश किया गया है। सागरोपम सहस्र ने अनेक सागर, सागरोपम सहस्र अनेक सहस्र सागर ऐसा। इतनी बात यहाँ लिखी है। अच्छा अच्छा, दो अलग अलग बता रहे हैं आप। अच्छा, ये दो बातें, ये तथा उन्होंने पहले लगाए ना, तो बाद में लगाना चाहते। सामान्य पंचेंद्रिय जीवों का उत्कृष्ट काल पृथक्त्व पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक सागरोपम सहस्र। हाँ, नहीं वो तथा पहले नहीं चाहिए था। और यानी ये जो पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक हजार सागर लिखा है वो सामान्य के लिए लिखा, सामान्य पंचेंद्रिय। और सौ सागर पृथक्त्व लिखा है वो तो पर्याप्त पंचेंद्रिय। हाँ, पंचेंद्रिय पर्याप्त। यानी लगातार पंचेंद्रिय पर्याप्त होगा तो सौ सागर पृथक्त्व मान लेते हैं, 700 से 800 सागर। अभी यहीं रुकते हैं, अभी हम प्रयोग कर्म की वगैरह बात कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन।